पूर्ववाक। इस पुस्तक की पूर्व पीठिका में स्वर्गीय शंभु मित्र हैं। संगीत नाटक अकादमी के कार्यकाल में मुझे उनके नैकट्य का सुयोग प्राप्त हुआ और मैंने उनके रंगकर्म का विवेचन करने का संकल्प लिया। अनेकानेक परीक्षात्मक वार्तालापों के बाद वे मुखर हुए और धीरे धीरे खुलने लगे। वे क्षण मेरे लिए अत्यंत आह्लादकारी थे। मैं उनके बताए दुर्गम दुरूह रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था और अचानक एक दिन वे चले गए। मेरा पहला संकल्प अधूरा रह गया। तब तक मैं सेवानिवृत्त हो चुका था और पूरे मनोयोग से इसमें लगा हुआ था। शंभुदा के निधन से मन में गहरा अवसाद था। तभी श्री अशोक वाजपेयी ने इस अवसाद से उबारा। एक अंतरंग मुलाकात में उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि शंभुदा के अवसान के बाद अब मैं श्री हबीब तनवीर के रंगकर्म का विवेचन विश्लेषण करना चाहता हूँ। उन दिनों में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मेरे इस कार्य को गति देने के विचार से उन्होंने मुझसे कहा कि हबीब तनवीर के रंगकर्म के अध्ययन विशेषण के संबंध में मैं एक प्रारूप तैयार करके उन्हें दूं। संभवतः वे मेरी राह आसान कर सके। उन्होंने सचमुच मेरी राह आसान कर दी। विश्वविद्यालय की एक योजना के अंतर्गत उन्होंने मुझे शोध वृत्ति देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं फिर पूरी तरह इस कार्य में लग गया। यह बात सन 1998 की है, यानी 7 वर्ष पूर्व। पहले सोचता था कि हबीब तनवीर के रंगकर्म से मैं काफ़ी कुछ परिचित हूँ। कोमल कोठारी द्वारा बोरुंदा जोधपुर में आयोजित कार्यशाला में मुझे हबीब साहब के एक साथ 1 माह समय बिताने का अवसर मिला था सन 1971 में। जब तब से उनकी सभी नाटकों को मैं कई कई बार देख चुका था और समझने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरी यह समझ कितनी कम और अपरिपक्व थी इसका अनुमान मुझे तब हुआ जब मैंने कलम हाथ में लेकर उन पर लिखने की शुरुआत। मैं समझ गया कि अभी मुझे हबीब साहब के रंगकर्म के विभिन्न पक्षों को गहराई से समझना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा, अन्यथा मैं इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तब तक हबीब तनवीर के संबंध में उपलब्ध सामग्री से सबसे महत्वपूर्ण थी श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल की पुस्तक हबीब तनवीर एक रंग व्यक्तित्व। वैसे हबीब साहब के रंगकर्म के बारे में पीएचडी के लिए किए गए शोध कार्य को भी मैं देख चुका था। बहुत कुछ बिखरी हुई सामग्री भी जेहन में थी, लेकिन उस सबसे पूरी तरह संतोष नहीं हो पा रहा था। बीच बीच में हबीब साहब से बातचीत भी होती थी और मैं उनके रंगकर्म को नए सिरे से विश्लेषित करने की भूमिका तैयार करता रहा। साथ ही उनके रंगकर्म को लेकर अनेक महत्वपूर्ण संगोष्ठियों में भाग लेने से भी मुझे बहुत लाभ हुआ। तभी मध्य प्रदेश कला परिषद ने अपनी पत्रिका कला वार्ता का 103वां अंक हबीब तनवीर के रंगकर्म पर केंद्रित किया। यह पुस्तक बहुत काम की साबित हुई। खास तौर से हबीब साहब का आत्मकथात्मक अंश, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी दिलचस्प घटनाओं का जिक्र किया जो मेरे लिए नितांत नहीं थी। कुछ भेंट वार्ताएँ और अन्य आलेख भी बहुत महत्वपूर्ण लगे। मुझे लगा कि मेरा काम आसान हो गया है, लेकिन मेरा काम आसान नहीं हुआ, बल्कि इस विशेषांक ने मेरे सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत कर दी। मेरी पुस्तक में किन्हीं बातों का दोहराव नहीं होना चाहिए। विभिन्न लोगों के अनुभवों, विचारों और अवधारणाओं के आधार पर यदि कोई नए निष्कर्ष सामने न रख पाए तो फिर प्रयोजन के सार्थकता संदिग्ध हो जाएगी। एक चुनौती और थी। हबीब तनवीर के अधिकांश लेख और भेंट वार्ताएँ अंग्रेजी में हैं। इनमें से कुछ का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, कुछ का अनुवाद मुझे करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हबीब तनवीर ने जो इंटरव्यू हिंदी या उर्दू में दिए हैं उनकी जुबान की मिठास और सहजता नहीं आ पाई है। परिणामतः हबीब तनवीर की उक्तियों के उद्धरण की भाषा में जबरदस्त असमानता नजर आती है, लेकिन कथ्य की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी सा था। हबीब साहब के उद्धरणों में भाषागत विविधता का यही कारण है। यह सच है कि विगत 4-5 वर्षों में हबीब तनवीर के रंगकर्म का केंद्रित प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठियों और विचार विमर्शों ने अनेक प्रसंगों में मुझे नए सिरे सोचने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय दीनानाथ पाठक, स्वर्गीय बीवी कारंत और स्वर्गीय निमिचंद जैन का स्मरण हो जाता है। निमी जी का उल्लेख विशेष संदर्भ में किया जाना जरूरी सा है। शंभुदा पर काम करते समय से ही मैं उनसे निर्देश ग्रहण करता रहा था। हबीब साहब के संदर्भ में भी उन्होंने अनेकानेक ऐसे प्रसंगों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया जो किसी रंगकर्मी के समग्र विवेचन के लिए नितांत आवश्यक है। संभवतः उनके सभी निर्देशों का पालन करना संभव नहीं हो सका, फिर भी उनसे हुई बातचीत में मुझे जो भी दिशा मिली वह बहुत महत्वपूर्ण थी। इस सब के बावजूद मेरा कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा था। मुझे हर बार लगता कि अभी भी अनेक पक्ष अछूते रह गए हैं, जिसका विश्लेषण करने से पूर्व खास तैयारी की जरूरत है। शायद यह मेरे आत्मविश्वास के अभाव का लक्षण था। वर्ष पर वर्ष बीत रहे थे और मेरा यह काम पूरा नहीं हो पा रहा था। मेरी मित्र मंडली में ऐसे अनेक जो मुझे स्नेह भी करते थे और मेरे आलोचक भी हैं। मेरी अकर्मण्यता पर खेद जाहिर करते और मुझे उत्साहित भी करते हैं, मुझसे अपेक्षाएं भी करते हैं और अंततः मुझसे निराश भी हो जाते हैं। लेकिन श्री महेश आनंद ने तो मुझ पर व्यंग बाणों की बौछार करके मुझे त्रस्त कर दिया। जब भी मिलते इस पुस्तक को लेकर ऐसा कुछ कर देते कि मैं अंदर तक तिलमिला जाता। अनेकानेक अवसर पर उन्होंने अपनी खीज भी जाहिर की, मुझे कौंचित भी रहे और हौसला अफजाई भी करते रहे। मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि श्री महेश आनंद की इन कटुवचनों ने मुझे कितनी अधिक आंतरिक शक्ति प्रदान की है। मैं हृदय से उनकी आत्मीयता की इस अनोखी भंगिमा के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। श्री देवेंद्रराज अंकुर भी व्यंग करने में कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन उनकी उक्तियों में एक विशेष प्रकार की शालीनता अवश्य रहती थी। सच तो यह है कि देवेंद्रराज अंकुर और महेश आनंद के उत्साहवर्धन के कारण यह कार्य पूरा हो सका है। इस प्रसंग में नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली और नाट्य शोध संस्थान कलकत्ता का उल्लेख करना चाहिए। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि उनकी संकलित सामग्री के उपयोग के अभाव में यह कदापि पूर्ण नहीं हो सकता था। इसी प्रसंग में मध्य प्रदेश कला परिषद के तत्कालीन निदेशक श्री कमला प्रसाद और मध्य प्रदेश लोक कला परिषद के महानिदेशक श्री कपिल तिवारी के प्रति आभार व्यक्त करना मैं दायित्व के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने अनेक प्रसंगों में मेरे इस कार्य की संतुष्टि दी है। और हबीब साहब के बारे में क्या कहूँ, उनकी एक उक्ति ने तो मुझे अंदर तक हिला दिया था। 3-4 वर्ष गुजरे जाने पर भी काम पूरा होने के कारण एक दिन उन्होंने कहा, सिंगल नोटेड कमा, भार्गव तुम पहले शंभू मित्र पर काम कर रहे थे ना? मैंने कहा हाँ। वे आगे बोले, अब वो नहीं रहे और अब तुम मुझ पर काम कर रहे हो। यह कहकर वे उन्मुक्तता से हंसे। मैं अवाक, कितनी भयंकर बात कह दी उन्होंने, कलेजे तक को चीर देने वाली बात। लेकिन उन्होंने आत्मीय संसर्ग भी कितना गहरा था। उनकी यह उक्ति मेरे मन प्राण में बस गई। उसके बाद हर मुलाकात में उन्होंने मुझे जिस तरह प्रोत्साहित किया वह केवल अनुभव की बात है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मोनिका दी तो साक्षात स्नेह की मूर्ति थी। उनकी आत्मीयता की भूमिका मेरे इस कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है। अभी कुछ ही समय पहले जब रंग प्रसंग के संपादक प्रयाग शुक्ल ने मुझे टेलीफोन पर मोनिका दी के निधन की सूचना दी तब मैं जयपुर में था, टेलीविजन और दिल्ली के अखबारों में से कटा हुआ। मैं अवाक, इस अप्रत्याशित घटना ने मुझे मोनिका दी के बारे में कुछ विस्तार से सोचने का अवसर दिया। रंग प्रसंग के लिए लिखे गए उस आलेख को मैं उस पुस्तक में सम्मिलित करने की अनिवार्यता अनुभव करता हूँ। इतने बड़े हादसे के बाद भी नगीन का धैर्य और साहस श्लाघनीय है। निश्चयतः वह हबीब साहब के रंग कर्म की नई स्फूर्ति और निरंतरता देंगी, खासतौर से उस वक्त जबकि हबीब साहब एक दुर्घटना का शिकार होकर संभवतः उतने चुस्त दुरुस्त नहीं रह गए जितने वे 80 पार करने के बावजूद थे। अपने टाइपिस्ट सुश्री मालती कश्यप के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अत्यंत धैर्यपूर्वक इस पुस्तक के बार बार होते जाते संशोधनों परिवर्तनों को करने में मुझे भरपूर सहयोग दिया है। इन सबके प्रति मेरा नमन, स्तवन और आभार। भारत रत्न भार्गव।